हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आप ब्रजनीनाथ दास दास प्रभु और श्याम मोहित माता जी के भक्ति वृक्ष के अंतर्गत जो भाग्यशाली उपदेश अमृत का श्रवण वर्णन कर रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, और फेसबुक के जो भाग्यशाली श्री रूप गोस्वामी के इस अद्भुत शिक्षा अमृत का रसास्वादन करते हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम पांचवा श्लोक श्री उपदेशामृत का पाठ करेंगे। ये श्लोक है बसंत राग में, श्लोक के राग को कहते हैं बसंत राग, क्योंकि अनुष्टुप छंद में थे अन्य श्लोक और ये जो श्लोक है स्वाई श्लोक का पाठ करते हैं। कृष्णेति यस्य गृहीतम मनस्साद्रिये दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तम् ईशम् शुश्रूष्य भजन् विघ्नम् अनन्य अन्य निन्दादि शून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या। सो ये श्लोक जो है, श्लोक का पाठ भी सबको करना चाहिए, अच्छा है। कृष्ण इति, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का गिरी, गिरी का मतलब जिसके गले से नाम निकलता है, कृष्ण का नाम जिसके गले से निकलता है, और राग इसका है वसंत तिलक राग, क्योंकि जो श्लोक होते हैं उनका कुछ छंद होता है, तो इस इनसे पहले जो दो तीन चार, एक का पता नहीं, दो तीन चार का था अनुष्टुप छंद, जो पूरी गीता है अनुष्टुप छंद में, लेकिन अब ये पांच छ सात आठ ये सब वसंत तिलक राग में है। तो ये क्या गाने के लिए इनका राग है बसंत तिलक। अब हमको तो नहीं आता है, हम तो जैसे है वैसे पढ़ते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होंगे, जो विद्वान होंगे, इसको उसी राग में पढ़ेंगे जिस राग का ये श्लोक है। तो कृष्ण एति यस्य गृहीतम मनस्य आदरात्, मनस्य का मतलब मन से आदर देना, उसका मन से आदर करना, जिसके मुख से भगवान श्री कृष्ण का, जिससे गले से भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण हो रहा है। दीक्षास्ति चेत, जिसने दीक्षा ली है, गुरु का शरण लिया है, प्रणतिभिः, उसको प्रणाम करना चाहिए, और उसका काम क्या है, हाँ, जिसने दीक्षा आदि ली है, च भजन्तम् ईशम, और भगवान की सेवा में लगा है, उसको प्रणाम करना चाहिए। शुश्रूषा का मतलब है सेवा करना, शुश्रूषा का अर्थ होना चाहिए सेवा। शुश्रूषा, शुश्रूषा प्रभुपाद ने लिखा है कि सेवा, प्रैक्टिकल सेवा, मतलब उसका आज्ञा का पालन, वो जो कहे वो करना। भजन विज्ञम, जो भजन को जानता है, इसका मतलब जो भगवान के प्रेममयी भक्ति और सेवा को जानता है। न अन्यम, अन्य निंदा आदि शून्य, और किसी की कभी कोई बुराई नहीं करता है। हृदय क्षतम, जिसके हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं है। भजन विज्ञम, जो भजन में प्रगति किया हुआ है। अन्य अन्यम, और दूसरा कोई रास्ते पे जाता ही नहीं। अन्य निंदा आदि, दूसरे किसी की निंदा नहीं करता है। शून्य, उसका हृदय बहुत पवित्र है। और इप्सते, इच्छा करनी चाहिए, किस चीज की संग लब्ध, उसका संग प्राप्त करना चाहिए। संग प्राप्त की परिभाषा उससे सुनना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए और उससे जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये तीन प्रकार के वैष्णव का जो चौथे श्लोक में हमने पढ़ा था कि छह प्रकार का आदान प्रदान जो है वो किससे करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे को वैष्णव में बड़ी बुद्धिमानी से विश्लेषण श्री रूप गोस्वामी जी के इस श्लोक के आधार पे तीन स्तर के वैष्णव हैं उनमें से किसके साथ कैसे व्यवहार करना है ये सीखना चाहिए। तो इस श्लोक का अनुवाद आपके सामने है। मन से आदर करना चाहिए जिसके मुख से कृष्ण का नाम का उच्चारण हो रहा है, और प्रणाम करना चाहिए जिसने दीक्षा ली है और भगवान की सेवा में लगा है, और उसका संग करना चाहिए बड़ी श्रद्धा के साथ, उसकी सेवा करनी चाहिए जो शुद्ध भक्त है, भक्ति में बहुत प्रगति किया हुआ है और जिसका हृदय दूसरों के निंदा से बिल्कुल शून्य, किसी में बुराई देखता ही नहीं क्योंकि सबको भगवान का भक्त देखता है। तो अब आगे हम इस अनुवाद को पढ़ना शुरू करें और प्रभुपाद जी के पहले इस तात्पर्य को पढ़ें, उससे पहले थोड़ा ये देख लें हरे कृष्णा। इस पांचवें श्लोक में हम पढ़ेंगे पहला जो परिच्छेद पढ़ेंगे उसमें तीन प्रकार के जो वैष्णव है उनका परिभाषा दी गई है, तीन प्रकार के या तीन स्तर के वैष्णव की परिभाषा, और दूसरे और तीसरे परिच्छेद में हम पढ़ेंगे जो नवसेखक भक्त है कनिष्ठ अधिकारी मतलब नीचे स्तर का जो भक्ति में है, और जो मध्यम अधिकारी जो मध्यम वर्ग का है भक्त है, श्रीमद् भागवत के आधार पे उनकी परिभाषा, यहां तक हो जाएंगे तीन परिच्छेद। पहले में तीनों का परिभाषा कौन सा स्तर है, दो और तीन में कनिष्ठ और मध्यम, और चार से लेकर नौ तक इसमें तीन प्रकार के वैष्णव को भगवत नाम जप के आधार के ऊपर कैसे पहचानना चाहिए। जैसे श्रीला रूप गोस्वामी ने, श्रीला रूप गोस्वामी के जो, अब ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें ये तीन शब्द हैं इनकी परिभाषा सामान्य नहीं है। हमने भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी परिभाषा सुनी थी, इस उपदेशामृत में इसकी परिभाषा है, चेतना चरितामृत में दो जगह इसकी परिभाषा है, और श्रीमद् भागवत में एक जगह। इन सब में अंतर है, तो इसमें हमारे को थोड़ा सा समय लगाएंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो तीन प्रकार के वैष्णव का कैसे आदर करना चाहिए शिला रूप गोस्वामी के परिभाषा के अनुसार जो हमारे इस उपदेशामृत में, ये नौ तक जाएगा, और दसवें में नाम जप करने वाला जो वैष्णव है, तीनों में जो भगवत नाम जप करने वाले में शुद्ध नाम करता है, अभास नाम में है कि अपराध के साथ करता है, उसके आधार में परिभाषा है। यहां तक आज हम पढ़ेंगे, और तीन प्रकार के वैष्णव चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार जो उन्होंने कुलीन ग्राम के वैष्णव को बताया था उनकी परिभाषा है ग्यारहवें परिच्छेद में। है तीन ही वैष्णव लेकिन महाप्रभु की परिभाषा दूसरी है, उधर दूसरी है मतलब उनका स्तर दूसरा है, और इनके स्तर का नापदंड क्या है, कौन से आधार पे इनके स्तर का पता लगता है, इनके आधार का पता लगता है, और कौन सी बात मैं कह, हाँ आधार का पता विशेष रूप से इनके आधार का परिभाषा कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। ये जो हमारा भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा था आदव श्रद्धार्थ साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, इन स्तरों में कौन सा कौन से स्तर पे है उसके आधार पे इनका जो है विभाजन किया गया है, और श्रद्धा के आधार पे विभाजन किया गया है, और शास्त्र के ऊपर क्या श्रद्धा है उसके ऊपर विभाजन किया गया है। तो इनको हम देखेंगे, तो आज 11 तक ही करेंगे, कल आगे से इसको देखेंगे, तो आज इतना ही, आगे इससे बढ़ते हैं। अब आपको जो अंग्रेजी में परिभाषा भेजी थी उसमें सामान्य रूप से इन तीन अधिकारियों का नापदंड क्या है, तो उसमें आपके पास ऊपर से नीचे तक श्रद्धा से लेके प्रेम तक ये 9 लिखो, ऊपर श्रद्धा नीचे प्रेम ये लिखो। इसमें जो श्रद्धा साधु संग और भजन क्रिया इन तीन के अंतर्गत जो है वो है कनिष्ठ। श्रद्धा है साधु का संग किया है, भजन क्रिया का मतलब दीक्षा लिए, दीक्षा नहीं लिए तो भी और दीक्षा ली है तो भी, ये आया कनिष्ठ में। और इसके बाद मोटा मोटी में अनर्थ निवृत्ति से लेकर आसक्ति तक मध्यम, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि और आसक्ति जो ये यहां तक पहुंच जाता है उसको मध्यम कहा जाता है, और भाव और प्रेम पे जो होता है उसको उत्तम अधिकारी। ये सामान्य रूप से ऐसे समझना है। अब इनमें ये तो हुई सामान्य परिभाषा, अब जो भजन क्रिया शुरू करके अनर्थ निवृत्ति तक पहुंच गया, इसका मतलब कनिष्ठ से थोड़ा ऊपर आया और मध्यम के ऊपर के स्तर तक नहीं पहुंचा है, उसको कहते हैं कनिष्ठ मध्यम। है कनिष्ठ लेकिन मध्यम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो निष्ठा से रुचि तक, सिर्फ निष्ठा तक रुचि तक है, अभी उसमें आसक्ति तक नहीं पहुंचा है, या अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा तक आया है, मतलब अनर्थ निवृत्ति से थोड़ा आगे बढ़ा है निष्ठा तक, तो उसको कहते हैं मध्यम। मध्यम मध्यम में बीच वाला है, क्योंकि मध्यम में नीचे वाला तो ऊपर वाला हो गया, तो ये मध्यम में ही मध्यम है। मतलब मध्यम अधिकारी के तीन विभाग करें तो इसमें मध्यम में ये दूसरे नंबर बीच वाला है, बीच वाला है। और अगर आसक्ति से भाव तक पहुंच गया है तो ये मध्यम उत्तम है। तो इसका मतलब मध्यम के तीन विभाग किए, एक कनिष्ठ मध्यम जो अनर्थ निवृत्ति तक पहुंच गया है, भजन क्रिया से आगे बढ़ गया, और एक निष्ठा तक पहुंच गया है अनर्थ निवृत्ति से आगे बढ़कर और रुचि की तरफ बढ़ रहा है, तो मध्यम मध्यम है। और जो आसक्ति को पार करके भाव को जागृत कर सका है वो उत्तम मध्यम है। तो मध्यम के ये तीन अलग अलग जो है स्तर हैं, और प्रेम वाला तो उत्तम, तो प्रेम के स्तर पे भाव से ऊपर उठ गया है, प्रेम तक पहुंच गया है। ये है जनरल परिभाषा। तो अब हम अपने पुस्तक से इनका पहले पढ़ते हैं, फिर और थोड़ा इसका विश्लेषण देखेंगे। हरे कृष्णा। क्योंकि पुस्तक के साथ चलने से, आपके पास रहेगा पुस्तक तो पुस्तक के साथ चलेंगे और उसको समझेंगे। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद ने जैसे हमको चौथे श्लोक के अंत में पांचवें श्लोक के साथ संबंध का वर्णन किया था प्रभुपाद जी, पहले वो कह रहे हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति को 6 प्रकार का जो आदान प्रदान करना है, ददाति प्रतिगणंती आख्याति गोयम प्रयच्छति और भुंजते भोंकते च, ये जो 6 प्रकार का आदान प्रदान करना है उसके लिए हमको उचित वैष्णव का चिन्ह करना चाहिए और बड़े विवेक से और श्री रूप गोस्वामी के नापदंड के आधार पे उनका चिन्ह करके उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब है हर वैष्णव के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं है, व्यवहार में इन तीन स्तरों को समझना है। ऐसे क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक वैष्णव का सदाचार है कि उचित व्यवहार सबके साथ करता है। जिस स्तर पे जो वैष्णव है वैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तीन प्रकार के भक्त हैं, यहां इस श्लोक में तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और यहां आप देखें, हाँ, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी सबके साथ लगा है। अब कनिष्ठ की प्रभुपाद जी परिभाषा दे रहे हैं, पहली परिभाषा, जिसने हरिनाम दीक्षा लिया है इसका मतलब श्रद्धा से ऊपर उठा है, साधु संग किया है और भजन क्रिया में पहुंच गया, दीक्षा ले लिया है, गुरुजन अपने गुरु से दीक्षा लिया है और हरे कृष्ण मंत्र जपने का प्रयास कर रहा है। यह सामान्य प्रभुपाद ने कनिष्ठ की परिभाषा दी, लेकिन आगे देखेंगे कनिष्ठ में भी तीन विभाग प्रभुपाद ने किए हैं, हम आगे जाके देखेंगे। अब प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरा, ऐसे ऐसा अगर व्यक्ति कोई है तो उसको हमको कैसे आदर करना चाहिए? मन से उसका आदर करना चाहिए। इसका मतलब मन में उसके लिए आदर भाव सम्मान होना चाहिए, हृदय में करुणा स्नेह हो, परंतु उसके साथ ज्यादा इन चीजों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता अभी नहीं है। और प्रभुपाद जी इससे आगे लिखते हैं, मध्यम अधिकारी कौन है? दीक्षा तो ली है, गुरुजनों का शरण ले लिया है, मतलब भजन क्रिया से वो आगे उठा है और पूर्ण रूप से भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है। इसका मतलब नाम तो जपता ही है, लेकिन नाम जपने के साथ पूर्ण रूप से सेवा में लगा हुआ है। और जो सेवा में लगा हुआ है ये मध्यम अधिकारी है, और इस मध्यम अधिकारी के लिए प्रणाम करना चाहिए, जैसे ऊपर लिखा है दीक्षा आदि भजनतम प्रणति। तो प्रभुपाद जी यहां प्रणाम का लिखा नहीं है, आगे मध्यम अधिकारी को बीच में समझना चाहिए, नीचे यानी ऊपर सबसे ऊपर उत्तम, बीच में मध्यम, उससे नीचे कनिष्ठ। अब प्रभुपाद जी सीधा उत्तम अधिकारी की बात करते हैं कि उद्यम अधिकारी का सबसे विशेष गुण है कि किसी की निंदा नहीं करता है, किसी को बुरा कहता ही नहीं है, देखता है बुरा लेकिन उसमें बुराई देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर है नहीं तो दूसरे में कहां से देखा है? उसका हृदय पवित्र है तो दूसरे में बुराई देखेगी ही नहीं। उत्तम, हां, उत्तम अधिकारी जो सबसे उत्तम है वो भक्ति में बहुत प्रगति किया हुआ है, किसी की निंदा नहीं करता है, उसका हृदय पूर्ण रूप से पवित्र है और उन्होंने देखो वो क्या है, सेवा में लगा है और इसने अनुभूति की है, ये ने इसने अनुभव किया है किसका? कृष्ण का, सेवा से अपने संबंध के अनुसार अनुभव किया है और ये किसी की निंदा में इसको कोई रुचि नहीं है और ये भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमी भक्त है। ऐसे भक्त, ऐसा जो भक्त है जो महाभागवत है उसका संग करना चाहिए, उसके साथ इन चीजों का आदान प्रदान करना चाहिए और उसकी सेवा करना चाहिए। और इसी का हमको इच्छुक होना चाहिए कि यही हमारा लक्ष्य है। यहां परिच्छेद पहला पूरा होता है, इसमें सिर्फ मध्यम का प्रभुपाद ने प्रणति का लिखा नहीं है, लेकिन हमको समझना चाहिए मध्यम को प्रणाम करना चाहिए, दीक्षा के बाद जो पूर्ण रूप से सेवा है वो कहीं देखें तो उसको प्रणाम करना चाहिए। तो पहला परिच्छेद पूरा हुआ, इसके अंदर पहली बात है कि हमारा आदान प्रदान जो छह चीजों का करना है उसके लिए चुनना चाहिए वैष्णव उसके अपने गुणों और के आधार के ऊपर कौन से स्तर पे और उसके साथ कैसे उचित व्यवहार करना है। और फिर श्री रूप गोस्वामी ने कनिष्ठ मध्यम और उत्तम की जो परिभाषा दी है वो संक्षेप में प्रभुपाद ने दिए। अब हमारा दूसरा जो परिच्छेद शुरू होता है इसमें भागवत में कनिष्ठ और मध्यम किसको कहा गया है, मैं समझता हूं ऐसे था हमने अभी कहा था उसको पढ़ रहे हैं। अब प्रभुपाद जी पहले तो उत्साह बढ़ाते हैं कि हमको कनिष्ठ हमेशा रहना नहीं है, ऐसा नहीं कनिष्ठ में हमको रहना चाहिए, लेकिन कनिष्ठ करता क्या है? वो भक्ति में भगवान के विग्रह की पूजा में उसकी रुचि होती है, वो पूजा में लगता है मंदिर के अंदर, परंतु आगे आएगा कि वो दूसरे वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो नहीं समझता। तो अब श्लोक भागवत से 11:2:47 का यहां प्रभुपाद जी ने दिया है, यह है कनिष्ठ की परिभाषा श्रीमद् भागवत में। अर्चायाम एव हरये, हरि की अर्चना करता है मतलब उनका डीटी वर्शिप करता है, विग्रह की पूजा करता है, पूजयाम पूजा करता है, यह श्रद्धयाते श्रद्धा के साथ भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करता है। आप हमारे पुस्तक में है, अगर पुस्तक आपके पास है तो उसमें है, और मेरा फोलियो खुला हुआ है 11:2:47। अब ये तो हुआ उसका गुण, अब उसमें कौन सी कमी है इसलिए उसको कनिष्ठ कहते हैं। न तद भक्तेषु, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति, हाँ यही है, थोड़ा नीचे बस, परंतु तद भक्तेषु मतलब भगवान के भक्तों के प्रति उसको सम्मान भाव आदर व्यवहार करना नहीं आता है। च अन्येषु और दूसरों के साथ भी, सब भक्त प्राकृत स्मृत, उसको अभी प्राकृत का मतलब अभी भौतिक स्तर पे अथवा नीचे के स्तर का ये भक्त है। अब प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद लिखा है, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करता है मंदिर में, परंतु उसको दूसरे भक्तों के साथ और सामान्य जनता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो नहीं आता है, उसको प्राकृत या कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। प्राकृत का मतलब अभी तक वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित है, प्राकृत है अभी। अब प्रभुपाद जी कहते इसलिए हमको इस स्तर से ऊपर उठना चाहिए और मध्यम के स्तर पे आना चाहिए। तो मध्यम का क्या स्तर है? तो अब मध्यम का स्तर बता रहे हैं भागवत से। तो ये दूसरे परिच्छेद में कनिष्ठ और मध्यम भागवत के आधार पे। तो ये अब हम 46वां श्लोक पढ़ते हैं। ईश्वरे तद अधिनेशो, एक तो भगवान ईश्वर, तद अधिनेशो मतलब भगवान के भक्त, बालिशेषु मतलब जो बेचारे अब बालक की तरह बिल्कुल इनोसेंट हैं, बहुत बच्चे की तरह बहुत सीधे सरल हैं, द्वेष्ट सूच और चौथे जो द्वेषी हैं, उनके साथ अलग अलग व्यवहार करता है। ईश्वर से क्या करता है? प्रेमा, ईश्वर से करता है प्रेम। तद अधिनेशु का मतलब भक्त, भक्तों से क्या करता है? मैत्री, उनसे करता है मित्रता। और बालेशो और जो बच्चे हैं मतलब जो बहुत सरल हैं, बहुत सीधे हैं, कपटी नहीं है, उनके ऊपर कृपा करता है, उनके लिए हृदय में दया धारण करता है। और जो द्वेषी हैं उनसे क्या करता है? उपेक्षा, उनकी उपेक्षा करता है, उनको दरगुजर कर देता है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। यह करोति, जो ऐसे करता है, सम मध्यम, तो ये श्लोक मध्यम अधिकारी जो मध्यम में होगा वही ऐसा व्यवहार कर सकेगा जो इस श्लोक में है, कनिष्ठ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकेगा, इसका अर्थ ये है। तो मध्यम अधिकारी वो भक्त है जो भगवान की प्रेम से सेवा करता है, अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान का प्रेम को मानता है, भक्तों के साथ मैत्री करता है और बेचारे अज्ञानियों के ऊपर दया करता है, और जो ईर्ष्यालु हैं उनकी उपेक्षा करता है, उनसे दूर रहता है। अब हमारा परिच्छेद दूसरा तीसरा शुरू हो रहा है। ऐसे हमारे को भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। इसका सीधा भाव यह है कि श्री प्रभुपाद जी का मनोवृत्ति यह है कि हम मध्यम के स्तर पे आए, ऐसे हमारे को भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। कल्टीवेट का मतलब अनुशीलन करना चाहिए, इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने हमको यहां सलाह दी है, परामर्श दिया है कि नाना प्रकार के वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी दोबारा कहते हैं, प्राकृत सहजिया जो भागवत में है वो हरे कृष्ण मंत्र जपता है, क्योंकि ये श्लोक में नहीं था लेकिन दीक्षा ली है तो हरे कृष्ण मंत्र जपता है। अब देखिए ये प्रभुपाद जी यहां तीन विभाजन कर रहे हैं। जय हरे कृष्णाय,
हरे
कृष्ण। ये फोन आया था, ये रहो कंपनी वालों। हाँ बेटा एक मिनट, वो कोई फोन दूसरे फोन में, ठीक है उनके पास जब कर लो, बंद कर। ये हरे कृष्णा। तो प्राकृत सहज या, अब देखो ये जो है कनिष्ठ का सबसे नीचे का स्तर है। कनिष्ठ में तीन स्तर है, फोन माया में है ना यार। एक मिनट बेटा होल्ड करना। हरे कृष्णा। और यस हरि बोल। ए बाहर ऐसे ही आप
कौन है?
चालू बस। ओके हरे कृष्णा, सारी डिस्टर्बेंस के लिए। प्राकृत सहज या जो नव शिक्षित है उसमें सबसे नीचे स्तर का है इसका। ये असल में कर्त क्या रहा है, सामान्य रूप से हरे कृष्ण जपते हैं लेकिन फिर भी धन स्त्री और यहां लिखा है व्यसनों में या नशे की चीजों में अभी तक लगे हुए होते हैं। इसका मतलब है दीक्षा नहीं ली है अभी, ये दीक्षा वाला नहीं है, ये श्रद्धा से पूर्व स्तर, ये श्रद्धा वाले स्तर वाला है। इसको हम आगे फिर दोबारा देखेंगे लेकिन इतना समझना चाहिए ये कनिष्ठ में नीचे आने, जो कनिष्ठ भी जो भगवान की पूजा करता होगा दीक्षा ली होगी वो कम से कम नशा तो नहीं करेगा और स्त्री का संग नहीं करेगा विवाह से बाहर। तो ये सबसे नीचे स्तर का कनिष्ठ यहां लिखा है। ऐसे व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र भले जपते हो अभी तक उनका हृदय शुद्ध नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का मन से आदर करना चाहिए, मन से उनका, क्यों हरे कृष्ण जप तो रहे। इसको आप ऐसे समझ लें, बहुत से लोग हमारे सत्संग में आते हैं, मंदिर में आते हैं, हरे कृष्ण हमारे साथ कीर्तन भी करते हैं, कभी माला देते हैं, जप भी करते हैं, लेकिन उनका सामान्य जीवन खान पान का और जो है वो ऐसा है, वो इस स्तर के, उनके लिए हमारे हृदय में आदर होना चाहिए क्योंकि ये भगवान के नाम जपने के लिए आ तो रहे हैं आगे, तो ये उस स्तर पे आते हैं। ये श्रद्धा का स्तर, श्रद्धा है तब आ रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये वो स्तर है। अभी इसके बाद प्रभुपाद कहते हैं जो इसके बाद जो अभी तक बिल्कुल बेचारे सादे हैं, सादे हैं का मतलब यह है कि बेचारे अज्ञानी हैं, बाप बच्चे जैसे हैं, वो गलत संग के कारण भगवान की भक्ति में नहीं लग पा रहे हैं उनके ऊपर दया करनी चाहिए। और उनको शिक्षा देनी चाहिए। ये मध्यम का काम है असल में। ये बीच में प्रभुपाद ने मध्यम की बात लिख ली है। अब लिख रहे हैं फिर दोबारा। ये दूसरे स्तर का नया भक्त है। वो प्राकृत का हो गया सबसे नीचे का, ये दूसरा है, नया भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी है। अब इसमें जो शब्द है वो महत्वपूर्ण है, एक्चुअली इनिशिएटेड। एक इनिशिएटेड, एक एक्चुअली इनिशिएटेड। एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण वर्ड, सही माना में। ऐसे आप भी किसी को कहते हरे कृष्णा जपो तो वो जपना शुरू करता है, लेकिन आपने उसको नियमित दीक्षा नहीं दी, ये आपका कार्य नहीं है। तो यहां है जो सही रूप से असल में क्या लिखा है हिंदी में, एक्चुअली क्या लिखा है एक्चुअली को
प्रभु, क्या मतलब आप कहां पर हैं? किंतु जब दीक्षित प्रमाणिक गुरु से दीक्षित हो चुके हैं,
प्रमाणिक गुरु से दीक्षित से पहले एक शब्द है उसका,
वास्तव में
जो दीक्षित हो चुके, वास्तव शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। एक वास्तव में महत्वपूर्ण है, फिर प्रमाणिक गुरु को छोड़ के आगे देखो। एंगेज इन कैरिंग आउट ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर अगर लिखा हो तो भी चल जाएगा, लेकिन एक शब्द और लिखा है गंभीरता से, देखा
उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए।
नहीं, वो तो बाद में है, लेकिन ये जो है प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेना लेके उनकी आज्ञा का पालन से पहले एक शब्द है सीरियसली एंगेज, गंभीरता से लिखा है।
गंभीरता
तो वास्तव और गंभीरता, ये दो महत्वपूर्ण शब्द है इस मध्यम के लिए और इस कनिष्ठ के लिए। ये कनिष्ठ में ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। बहुत से दीक्षित भी हैं लेकिन वो सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। ऐसे बहुत से हम देखते हैं दीक्षा ली फिर बाहर चले गए, हरे कृष्ण जब भी रहे हैं आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। तो ऐसे कनिष्ठ जो है उसको प्रणाम करना चाहिए। मध्यम ने ये कनिष्ठ है उसको प्रणाम करना, ये कनिष्ठ है लेकिन ये भजन क्रिया में लगा हुआ है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, वास्तव दीक्षा ली है, बहुत गंभीर है। तो ये हमारा दूसरा परिच्छेद पूरा हो रहा है मेरे ख्याल, तीसरे परिच्छेद में हम जा रहे हैं पैराग्राफ में। अब श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत संग सबको, ये जो संस्था है सबको एक अवसर देती है, एक मौका देती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है कि कौन सी जाति का है, कौन से काला है कि गोरा है, और कौन सा वर्ण है, कोई भी आ सकता है। हर एक इस संस्था में शामिल हो सकता है, हमारे साथ बैठ सकता है, प्रसाद खा सकता है, कृष्ण कथा सुन सकता है। इसका मतलब जो श्रद्धालु होंगे वो आएंगे। फिर प्रभुपाद जी के जब हम देखते हैं कि कोई ऐसे श्रद्धालु कृष्ण भावना में, फिर यहां लिखा है वास्तव में रुचि रखता है, इसका मतलब है हमारे मंदिरों में बहुत से प्रसाद खाने वाले आते हैं, मना नहीं करते, आओ खाओ, लेकिन क्या वो वास्तव में रुचि रखते हैं कृष्ण भावना में और दीक्षा लेना चाहते हैं? तो उनको हम शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और फिर उनको हरे कृष्ण मंत्र जप ले। तो ये भजन क्रिया की बात हो रही है। पहला वाला सिर्फ श्रद्धालुओं को, सबको निमंत्रण है आओ, ये है श्रद्धालु। और ये श्रद्धा भी भक्तों ने उसको कभी बोला होगा आओ तब आए, लेकिन अब उनमें से जो वास्तव में रुचि जिसको हुई है उसको कहते हैं हम दीक्षा देते हैं, इसका मतलब वो भजन क्रिया चालू हो गई। अब दोबारा प्रभुपाद जी वो ऊपर शब्द है उनको दोबारा आवृत्ति कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। देखो जब देखो ये भी कनिष्ठ है, जब कनिष्ठ भक्त वास्तविक रूप से दीक्षा लेता है और भक्ति में गुरु प्रमाणिक गुरु के आदेश से भक्ति में लगता है, तो उसको एक प्रमाणिक वैष्णव मानना चाहिए। इसका मतलब वो वैष्णव हो गया और उसको हमें प्रणाम करना चाहिए। ये कनिष्ठ को प्रणाम की बात हो रही है। तो कनिष्ठ में विभाजन हो गया, प्राकृत सहज बाहर निकल गया, उसको मन से प्राकृत को करना है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ऐसे बहुत से वैष्णव जो कनिष्ठ स्तर पे हैं, उनमें से कोई एक हम देखते हैं कि बहुत गंभीरता से भगवान की सेवा में लगा हुआ है और बड़े कठोरता के साथ, कठोरता क्या कहना चाहिए, बहुत दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, 16 माला है जैसे कह रहे हैं, और वो माला के ऊपर जप रहा है। और कृष्ण भावना का विस्तार कैसे करना, इसका मतलब प्रचार के कार्य में लगा हुआ है। ऐसे वैष्णव को उत्तम वैष्णव समझना चाहिए, ऐसे वैष्णव को उत्तम समझना चाहिए। तो इसमें उत्तम की सामान्य परिभाषा है और इसका संग करना चाहिए और इसके संग की सदा ऐसे संग का सदा इच्छुक और लालायित रहना चाहिए। अब चैतन्य चरितमृत में इनका परिभाषा क्या है, कनिष्ठ मध्यमादि की, उसका वर्णन हो रहा है। कृष्ण में भक्त कैसे आसक्त होता है, चैतन्य चरितमृत में लिखा है, वो ये है दीक्षा की परिभाषा। दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण। दीक्षा के समय भक्त शरणागत होता है, अपने आप को गुरु के शरण में डाल देता है। उस वक्त क्या होता है, सेई काले, उसी समय कृष्ण तारे, उस कृष्ण उसको करे आत्म सम, उसको अपना लेता है कि ये मेरा है। शरण लेता है गुरु की और कृष्ण कहता है ये मेरा है। ये है अपना जो चैतन्य चरितमृत में श्लोक। अनुवाद में क्या लिखा है, कृष्ण अपने समान समझता है उसको। अब प्रभुपाद दीक्षा की परिभाषा लिख रहे हैं। दीक्षा का मतलब शुभ आरंभ, किसका, आध्यात्मिक जीवन का, यह आरंभ है। और भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी इसके लिए लिखते हैं कि दीक्षा कहते किसको है, इसका मतलब कनिष्ठ अधिकारी कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं कि दीक्षा लेते हैं, दीक्षा का अर्थ क्या है। और ये तो ऊपर वाला शिष्य की बात हो गई, और नीचे वाले में गुरु क्या देता है शिष्य को, शिष्य शरणागति करता है, कृष्ण उसको अपने समान स्वीकार कर लेता है, अपना मान लेता है। तो शिष्य क्या करता है, देव्यम ज्ञानम यतो दद्यात, गुरु देता है शिष्य को देवीय ज्ञान। देव्यम ज्ञानम यतो दद्यात, जिस समय उसको देवीय ज्ञान दिया जाए, कुर्यात प्रापस्य संक्षयम, कुर्यात प्रापस्य, उसको प्राप्त करके संक्षयम वो फिर तस्मात् दीक्षेतु सा प्रोक्ता दीक्षस तत्व को विदेह। पूरे श्लोक का यहां प्रभुपाद ने सिर्फ सामान्य दो लफ्ज़ों दीक्षा के माध्यम से नया भक्त कनिष्ठ भौतिक भोग से अपने आप को अलग कर लेता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में रुचि रख के आगे बढ़ता है। लेकिन श्लोक का अर्थ देखेंगे तो है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात, गुरु अपने शिष्य को दिव्य ज्ञान देता है। और दिव्य ज्ञान ये भगवान के संबंध का ज्ञान है कि हमारा कृष्ण से क्या संबंध है, आप कृष्ण के दास हो, और कृष्ण का भजन करना आपका स्वरूप है, ऐसा दिव्य ज्ञान देता है। हम अपने रोज गुरु पूजा में करते दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशी, तो ये गुरु की परिभाषा है। कुर्याद प्रापस्य संक्षम, कुर्याद प्रापस्य, जैसे उसने दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है, संक्षम तस्मात दीक्षा इति प्रोक्ता, संक्षयम सम्यक क्षम, सब समाप्त हो गया, क्या समाप्त हो गया, भौतिक भोग, तस्माद इसलिए, दीक्ष इति इसको दीक्षा कहते हैं, सा प्रोक्ता कहा जाता है, देशिकैस्तत्व अब देश प्रोक्तादि ईश कैस्तत्व, अब ईश के तत्व को मतलब अब आध्यात्मिक तत्व क्या है इसको जानना शुरू करता है धीरे धीरे। ऐसे शब्दों का अर्थ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस श्लोक को और देख के समझ सकते हैं। अब एक और परिचय पेज पढ़ लेते हैं आज का। अब प्रभुपाद जी अपनी अनुभूति बता रहे हैं, पहले इस्कान का उद्देश्य लिखा है इस श्लोक में, आपके उद्देश्य इस्कान के उद्देश्य में दो लाइनें हैं ऊपर में, वो याद रखना कि सबको हम निमंत्रण देते हैं आइए, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी आ सकता है, स्त्री हो पुरुष हो, ये इस्कान का उद्देश्य है। अब वो प्रभुपाद लिखते हैं हमारे को ये व्यक्तिगत अनुभव है, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में बहुत बड़े धनी परिवार से आते हैं और उनका फिर भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं रहती है, ये प्रभुपाद जी दीक्षा की परिभाषा बता रहे हैं। और आध्यात्मिक जीवन में बहुत तत्परता से आगे बढ़ते हैं, जप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, आज्ञा करते हैं, तो सेवा करते हैं, ये प्रभुपाद जी कहते हैं हमने, प्रभुपाद ने जिनको दीक्षा दी उनके अंदर प्रभुपाद ने ये गुण देखे, इसका मतलब दीक्षा से ये परिवर्तन शिष्य में आना चाहिए। प्रमाणिक गुरु का यही मानता है, विशेषता है कि शिष्य में भौतिक भोग से मन उठ जाए और आध्यात्मिक जीवन में रुचि बढ़ जाए। वो बहुत धनी परिवार से आते हैं और उनके रहने का स्तर बहुत ऊंचे स्तर का होता है, बहुत आरामदायक जीवन होता है, बड़ा सुखप्रद जीवन होता है, परंतु कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के लिए वो हर प्रकार के जीवन के स्तर पे रहने को तैयार हैं। उनका दो ही लक्ष्य है, भक्त मंदिर में रहने को मिले और भक्तों का संग मिले, तो कहीं भी रहने को तैयार है। और प्रभुपाद जी ये उपदेशामृत का हमने आमुख पढ़ा था, प्रभुपाद ने लिखा है मेरे ख्याल में वृंदावन में लिखा है 72 में, देख लेना फिर एक बार। तो इस वक्त तक प्रभुपाद जी ने बॉम्बे आदि में जो मंदिरों का कार्य शुरू किया था वहां ये सब अमेरिकन और यूरोपियन जो पाश्चात्य देशों के भक्त थे, रहने के लिए तो छत थी जो जिसके अंदर किराएदार प्रॉपर्टी पे रहते थे उसकी छत के ऊपर रहते थे, और इनके लिए टॉयलेट नहीं थे, खड्डा बना के और चारों तरफ पर्दा लगाकर टॉयलेट, पानी चलता हुआ नहीं था, बाल्टी भर के ऊपर जाके स्नान करते थे, और इतने बड़े चूहे होते थे कि प्रसाद रखते थे तो चूहा खा जाते थे। तो इतना ज्यादा तपस्या की जीवन ऐसे लोगों ने व्यतीत किया जो बहुत सुख सुविधा आराम के साथ पाश्चात्य देशों में रहे थे। और प्रभुपाद जी की जमुना जो एक प्रिय शिष्य थी आरंभिक दिनों में, जिन्होंने गोविंदम आदि पुरुषम गाया है जो हम सुनते हैं, वो दिल्ली में गर्मी, वृंदावन के गर्मी के अंदर वो कहते नीचे पानी फर्श पे डालती, फिर मैं पंखा चला के सोती लेकिन लगता है ओवन में सोई हुई हूं। तो एक दिन प्रभुपाद ने उसको कहा पहले आप इंग्लैंड में रही तो वाटर प्रूफ हो गई, क्योंकि वहां तो हर समय बरसात होती है, अब वृंदावन में आप फायर प्रूफ हो गई। इसका मतलब वो कितनी तपस्या करते थे वो भक्त, ये प्रभुपाद जी उन अपनी अनुभव से, दीक्षा से उनके जीवन में भौतिक भोग से विरक्ति और कृष्ण भक्ति में आसक्ति कैसे उत्पन्न हुई है। जमुना जी कहती एक बार प्रभुपाद जी रात को आए 10 बजे वृंदावन में, कहा मुझे मैं भूखा हूं। अब उस जमाने में वृंदावन का मंदिर इतना दूर था कि कहीं से कुछ लाना या कुछ खुला होना संभव नहीं था, और रसोई घर में हमने देखा, तब तो चूल्हा जलता था, गैस वैस नहीं थी। मैंने देखा एक टमाटर है और आटा थोड़ा पड़ा है, तो एक टमाटर का सूप बना दिया और आटे से एक पराठा बना दिया प्रभुपाद को। अब कुछ नहीं था तो उसमें से ही काम चला लिया। और वो अब कभी पाश्चात्य देशों के लोगों ने चूल्हे के ऊपर रोटी बनाई होगी, लकड़ी के ऊपर या कोयले के ऊपर, ये तो संभव नहीं है, लेकिन वो सब ऐसा करने को तैयार थे। ये प्रभुपाद जी दीक्षा की, दीक्षा का परिणाम, रिजल्ट क्या है वो बता रहे हैं। और अब ऐसा नहीं दिख रहा है, अब ऐसा भक्तों में दीक्षा के बाद कुछ दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं दिख रहा है। अब सबको, इतनी मंदिरों में सुविधाएं हैं कि सबको सुविधा चाहिए। हम वृंदावन मंदिर में जब आए थे 90s में, तो पूरे मंदिर के ब्रह्मचर्य आश्रम में एक प्रभुपाद जी के शिष्य के पास कूलर था, सिर्फ गर्मियों के अंदर जो वाटर कूलर है वो था, बस एक, और कुछ नहीं। हम छत के ऊपर पानी डाल के रात को सोते थे, हमें याद है। अब तो ऐसे लगे हुए सब कमरों में कुंवर, कूलर की क्या बात है। तो ये जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो जब तक तपस्या नहीं होगी, इंद्रियों का संयम नहीं होगा, तब तो भक्ति में प्रगति इतनी सरलता से नहीं। प्रभुपाद के सन्यासी, उनके जीवन चटाई पे सोने वाला जो जीवन था उनका, वो अभी भी पुराने जीवन को याद करते हैं कि कितनी तपस्या करते थे। तो प्रभुपाद ने ये अपनी अनुभूति लिखी है। अब कहते हैं दीक्षा के अधिकारी को, दीक्षा लेने का अधिकारी कौन है, उसकी योग्यता क्या है। जब वो भौतिक भोग में रुचि न रखे, विरक्त हो जाए, तब वो गुरु से दीक्षा लेने के योग्य बनता है। और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के पहले अध्याय के 13वें श्लोक में कुछ नियम बताया गया है, और ये नियम 6.1.13, ये तो अजामिल वाले प्रसंग के अंतर्गत है, लेकिन साधन का है। तपस्या ब्रह्मचर्येण सम्येन च दमेन च, तपस्या करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, समय न इंद्रियों को संयम में करना रखना चाहिए, समय न मन को सब, और दमे न इंद्रियों को संयम, मन और इंद्रियों को संयम में करना चाहिए। जब दीक्षा के लिए कोई बिल्कुल गंभीर है, हाँ ये तपस्या ब्रह्मचर्य समय न दमे न च त्यागे न सत्य शौचाभ्याम यमे न नियमे न वा, तपस्या ब्रह्मचार्य शम दम मन और इंद्रियों का संयम, त्याग भोग से त्याग, सत्य जीवन को सत्य, सत्य के ऊपर आधारित होना, शौच आदि भी पवित्रता रखना अंदर बाहर की, यमेन क्या नहीं करना चाहिए और नियमेन क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स दोनों का, देहवाग बुद्धिजंधा। तो ये असल में प्रभुपाद ने ये श्लोक लिया है कि इसकी आवश्यकता है, जो दीक्षा लेना है उसमें ये योग्यता होनी चाहिए। जो बहुत गंभीर है दीक्षा के लिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रबुद्ध कैसे हूं, और इसको प्रभुपाद ने लिखा है दिव्य ज्ञान। इसका अर्थ प्रभुपाद जी श्री जीव गोस्वामी के श्लोक की परिभाषा कर रहे हैं, ददाति दिव्य ज्ञानम, जो ऊपर आया था उसकी परिभाषा ये है दिव्य ज्ञान, तब वो दीक्षा के लिए योग्य है। दिव्यम ज्ञानम उसको क्या कहते हैं, तद विज्ञान, दिव्य ज्ञान को कहते हैं तद विज्ञान। दिव्य ज्ञान की परिभाषा क्या है, तद विज्ञान। तद का मतलब श्री कृष्ण, विज्ञान माने उनकी अनुभूति का मार्ग, तो भगवान के विषय में ज्ञान। और तद विज्ञान प्रभुपाद ने कहां से शब्द लिया दिव्य ज्ञान को, यह श्लोक है मुंडक उपनिषद का, तद विज्ञानार्थम गुरुम स गुरुम एवाभिगच्छेत। जब उसको भगवत अनुभूति की इच्छा हो तो वो प्रमाणिक गुरु के शरण में जाए। अब यहां जो लिखा है, कौन से विषय को वो जानना चाहता है? दिव्य विषय में, भगवान के विषय में, परम सत्य के विषय में जानना चाहे तो उसको दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु का शरण लेना चाहिए। भागवत के 11:3-21 में फिर गुरु की ये तो हम साधन भक्ति के अंग का पहला है, गुरु पद आश्रय, उसके अंदर ये श्लोक है। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। संसार में दुख है, जो सुख चाहता है, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसको, जिज्ञासु को गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो ये है दीक्षा, कनिष्ठ अधिकारी कैसे बन सकता है, दीक्षा लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। अब हम अगर चाहें तो अब इसी की ओर परिभाषा आगे चल रही है। मैं समझता हूं समय पूरा हो रहा है। आपके पास जो स्लाइड है इसको देख लेते हैं, कहें तो नहीं तो वो जो हमने नहीं, आप स्लाइड को पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा है। त्रिविध वैष्णवा, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, और फिर इसमें हमारे पुस्तक से लिखा है, जो हमने पढ़ा है वो सब यहां लिखा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है? हाँ, इसके बाद है त्रिविध वैष्णव, कनिष्ठ की परिभाषा, कनिष्ठ अधिकारी के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। कनिष्ठ को मन से नमस्कार करना चाहिए, और दीक्षा जिसने ली है उससे व्यवहार कैसे करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। और जो उत्तम है उसमें सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा, तो उसके लिए अधिकारी के साथ संग लब्धिया, उसके संग की इच्छा करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। ये श्लोक के शब्दों को यहां रखा है। अब जो हमारा श्लोक है इसमें कनिष्ठ अधिकारी है श्रद्धा से पहले से लेकर अनर्थ निवृत्ति तक। इसका मतलब जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में कनिष्ठ की परिभाषा जो दी गई है, वो श्रद्धा से पहले, मतलब अभी आना शुरू हुआ है, फिर साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति तक, ये कनिष्ठ है। मध्यम अधिकारी कौन है? अनर्थ निवृत्ति से आसक्ति तक। और उत्तम है भाव से प्रेम के तक। ये हमारे इस श्लोक की अंदर इनका स्तर है, इस लेवल का। ये हम दूसरी जगह से बता रहे हैं। अब हमारे यहां जो लिखा है स्लाइड में, पांचवें श्लोक, इसके आगे जाइए, इसमें क्या है देख लेते हैं, फिर यहां विराम देते हैं। कल थोड़ा इस कनिष्ठ मध्यम के ऊपर चर्चा और करेंगे। हाँ, यहां लिखा है कनिष्ठ अधिकारी नौ शिक्षा भक्त, दीक्षा हरि नाम लिया है, अर्च विग्रह की सेवा श्रद्धा पूर्वक युक्त, परंतु उचित व्यवहार नहीं जानना, कोमल श्रद्धा, ये क्या आगे फिर आएंगे, कोमल श्रद्धा ये है भक्ति रसामृत से, और ये है चेतना चरितमृत से। नव दीक्षित होता है, इसकी श्रद्धा कोमल होती है, नव दीक्षित होता है, क्रमशः हरिनाम लेकर उत्तम अधिकारी के पद पर उठता है। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है हमारे पुस्तक में, उसका वर्णन है यह। और दीक्षित है मध्यम अधिकारी, गुरु द्वारा पूरी तरह से भगवान की सेवा में युक्त है, भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित है, चार वर्गों के प्रति अलग व्यवहार, शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्टि नहीं है, ये है चेतना चरित्र में, निपुण नहीं है शास्त्र में, लेकिन श्रद्धा बहुत प्रौढ़ है, पूर्ण है, परंतु श्रद्धावान है, उसे हरिनाम में दृढ़ श्रद्धा है, नियम भक्ति नियम सेवा संपदान में दृढ़ है, नियत भक्तिमय सेवा में, भक्ति की भावी प्रगति का पात्र है, आगे बढ़ेगा ये। और उत्तम के क्या लिखा है, सबसे पहले भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, महाभागवत कहलाते हैं, निंदा में रुचि नहीं है, हृदय पूरी तरह शुद्ध है, अनन्य कृष्ण भावना अमृत अवस्था की अनुभूति करते हैं, भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर विधि विधानों का पालन करते हैं, जप माला पर नियत संख्या में जप करते हैं, सदैव कृष्ण भावना अमृत का विस्तार करने के विषय में विचार करते हैं, अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेते हैं और कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं रखते, उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अनेक पतिताओं को वैष्णव बनाते हैं, ये उसकी पहचान है, कितने लोगों को भक्त बनाते हैं। तो ये क्या है, सारे पुस्तक से ये निकाले हैं, जो आगे भी आएंगे उन सबको इकट्ठा करके यहां दिया है। तो यहां हम विराम देते हैं हमारा, कल हम आगे से बढ़े आगे के परिच्छेद को कल पढ़ेंगे। तो कल हमारा क्लास 12 बजे 12:15 बजे शुरू होगा, ठीक है। हरे कृष्णा,
किसी का कोई प्रश्न है?
हाँ, कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। नहीं।